शांति, ओम शांति। हम सभी कहां बैठे हैं? बाबा ने आज बहुत ऊंची बात बताई है। हम सभी कहां बैठे हैं? होलीएस्ट ऑफ होली बाप के घर में बैठे हैं। शिव बाबा भी होलीएस्ट ऑफ होली है और ब्रह्मा बाबा भी होलीएस्ट ऑफ होली बाप के साथ है, तो उनके घर में बैठे हैं। अब इस होलीएस्ट ऑफ होली बाप के घर में कौन आ सकते हैं? जो पवित्र होंगे। तो बाबा कहते हैं यहां कोई भी पतित को अलाव नहीं है। बाबा के समय साकार, बाबा के समय तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे कि कोई भी पतित को अंदर में अलाव नहीं करते थे, केवल बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही आ सकते थे। तो ये पांडव भवन, ये बहुत बड़ा किला है, भगवान का किला। इस किले में केवल जो भगवान के बच्चे हैं वो ही आ सकते हैं, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है। तो पहले तो ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, फिर बाद में सोचा कि देखो लोगों को तो आना चाहिए, तभी तो यहाँ से लाभ लेंगे। तो फिर पांडव भवन के बाहर सबसे पहले राजयोग भवन बना, जो पांडव भवन से थोड़ा दूर है। और राजयोग भवन में यही लक्ष्य था कि यहाँ वीआईपीज को बुलाया जाए और उनको राजयोग की शिक्षा दी जाए, शिविर रखी जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा वीआईपीज को बुलाने लगे। फिर राजयोग भवन के बाद फिर ज्ञान विज्ञान भवन बना, तो फिर सुखधाम बना। तो धीरे धीरे करके ये सब जो पांडव भवन के बाहर कॉम्प्लेक्सेस बने या मकान बने, फिर यहाँ हम बुलाते थे। और यहाँ पर भी बाबा की ट्रेनिंग है, शिविर की ट्रेनिंग होती थी। पहले तो मेडिटेशन हॉल में शिविर शुरू की, फिर वो छोटा पड़ गया। पहले तो राजयोग भवन में ही था, 25-30 पुष्कर से आते थे, ये 76 की बात है, तो थोड़े से ही आते थे। और उनके लिए तो सब स्पेशल था, रहना तो वहाँ था ही, ऊपर क्लास में क्लास करते थे और भोजन भी उनको वहीं मिलता था। नीचे जो राजयोग भवन में डाइनिंग हॉल है वहीं भोजन भी करते थे। यहाँ पांडव भवन में बस आए, चक्कर लगा के चले गए, बाकी सारा रहना करना राजयोग भवन में। तो फिर तो वहीं शिविर होती थी। फिर ज्ञान विज्ञान भवन बना तो हॉल बनाए, वहाँ जो आगे आगे हॉल है तो वहाँ बनाया, राजयोग शिविर वहाँ होती थी। फिर मेडिटेशन हॉल जब बना तो फिर मेडिटेशन हॉल में शिविर होती थी। फिर ज़्यादा आने लगे तो फिर ओम शांति भवन में भी शिविर रखते थे। और अभी तो देखो शांति वन तो बेहद का घर है, जहाँ डायमंड हॉल में भी शिविर होती है, 4-5 हजार भी आ जाते हैं शिविर में। तो देखो बाबा का घर का विस्तार कैसे हो गया। लेकिन उन दिनों में साकार बाबा के समय तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, किसको यहाँ ले आना है। आज भी फॉर्म तो भराते हैं ना, जो भी बाबा के पास आते हैं उनसे फॉर्म भराते हैं, अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं तो फॉर्म तो भराते हैं। तो आज 31/12/2025 है। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का ये घर है, यहाँ तुम किसी भी पतित को ला नहीं सकते। मधुबन क्या है, होलीएस्ट ऑफ द होली, बाप का घर है, यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे है, उनकी निशानी क्या होगी? अड्बाबा ने बहुत निशानियां बताई, ईश्वरीय मिशन है, तुम ईश्वर का पैगाम देते हो तो ये इस ईश्वरीय मिशन में कौन इस ये पैगाम दे सकते हैं, उसके लिए भी तो कुछ नियम मर्यादाएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, वे स्तुति निंदा मान अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। अब बाहर गए तो कोई ग्लानी भी करेंगे, है ना, बहुत कुछ कहेंगे भी उल्टा सीधा, तो गुस्सा तो करना नहीं है। तो इसीलिए पहली उनकी विशेषता होगी, वे स्तुति निंदा मान अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। अब धीरज से काम है तो क्रोध कैसे करेंगे, हाँ तो क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज बाबा ने बहुत जोर दिया है मुरली में, कैसे एक दो को देखो, केवल आत्मा की दृष्टि से देखो और किसी भी भाव से नहीं देखो। तो तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना यानी इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है, जले न क्यों परवाना क्षमा के लिए, ऐसा गीत है। तो परवाना क्षमा पर फिदा हो जाता है ना, तो जले न क्यों परवाना क्षमा के लिए। ओम शांति, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं। कौन है वो रूहानी बाप? स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट्स को। हम सब कौन है? रूहानी स्टूडेंट्स। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, अभी तो देह अभिमान में होते हैं, टीचर भी देह अभिमान में, तो रूहानी स्टूडेंट्स भी नहीं कहेंगे और रूहानी टीचर भी नहीं कहेंगे। तो वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के, आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे, अब राम राज्य में चलने के लिए पांच विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते तो उनको समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? जिनके पास ये नॉलेज नहीं है तो उनको समझाना पड़ता है, तुम रावण राज्य में हो, बता सकते तुम रावण राज्य में हो? खुद तो समझेंगे नहीं जब तक तुम नहीं बताएंगे हम रावण राज्य में हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को भी कहते हो कि हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, जब ऐसे कहते हो कि हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? तो वो निश्चय तो करते नहीं है, नहीं करेंगे निश्चय। ये क्या कहते हो, भगवान पढ़ाते, भगवान ऐसे पढ़ाता है क्या? हमारे डबल विदेशी कई बताते हैं कि हर साल मधुबन आते हैं, हर साल आते हैं, तो उनके जो लौकिक होते हैं या मित्र संबंधी होते हैं उनको कहते हैं, आपको क्या मिलता है भारत में, क्या रखा है भारत में, यहाँ तो कितना सुख है, भारत तो गरीब देश है, पता नहीं, ये तो यही प्रोपेगेंडा थी ना पहले, तो भारत में क्यों जाते हो? तो वहां कहते भले और कुछ मिले न मिले, हमको तो वहां भगवान मिलता है। तो भगवान मिलता है जब कहते ना, तो लोग कहते तुम पागल तो नहीं हो गए, भगवान मिलता है, ऐसे ही सस्ता है क्या भगवान जो ऐसे मिलेगा? तो लेकिन हम कहते हाँ, हम बच्चों के लिए तो बाबा रोज आते हैं, हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं, कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। भगवान खुद कहते मैं आया हुआ हूँ, तो भी कई आत्माएं हाँ निश्चय नहीं करती है कि सर कि भगवान ऐसे आ भी सकता है। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते। यहाँ भी सबको कहा जाता है ना बैज लगा कर आओ, हमारे राष्ट्रीय गेट पर सिक्योरिटी होती है, वो कहते हैं बैज कहाँ है, बैज कहाँ है, इसलिए सबको बैज तो लगा हुआ ही होगा। तो बाबा कहते हैं परंतु बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं तो ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवे, ये टीचर का काम है कि उनका नाम और वो फॉर्म वगैरह सब भेजे, फिर कहो कि इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भल भेज दो, अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे, वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यहाँ तो ईश्वर पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से तो पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे, चलो बहुत कमाई हो जाती है मंथली, उनको तनख्वाह भी को बहुत मिल जाए, बाबा कहते फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे, हाँ फिर तो उनका रिटायर भी तो हो जाते हैं ना, तो कहाँ तक कमाते रहेंगे, विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलमिटीज भी सब आने वाली है, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाकर समझाना होता है, फिर उनको मुरली में नहीं लाते हैं, जो समझते नहीं है तो मुरली में कैसे लाएंगे, तो बाहर विजिटर्स रूम में उनको बिठाकर समझाते हैं। तो बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है, ये है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विजयंती होंगे का मतलब विश्व का राज्य करेंगे। कौन कौन विश्व का राज्य कर सकेंगे, जो विजयंती होंगे, जो विजय जरूर प्राप्त करेंगे विकारों पर। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते ही नहीं है कि रावण पर जीत पाने से हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, अभी तो फिर भी बहुत ढील दी है, बाबा कहते आगे चल करके बहुत कड़े कायदे हो जाएंगे, कौन यहाँ आ सकते हैं, कौन यहाँ रह सकते हैं। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली, बाप का घर। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, अब इंद्र सभा में कोई नरक का चला गया तो इंद्र को तो बांस आई ना, क्योंकि इंद्र सभा में तो परियां थी, पुखराज परी, सब्ज परी, बाबा नाम लेते उन परियों का, वो इंद्र सभा में जाती थी रहती थी। तो इन शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है, नौ रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में तो नीलम भी होता है, पन्ना भी होता है, माणिक भी होता है, साकार बाबा तो जौहरी थे, उनको सब ये जो भी प्रेशियस ज्वेल्स जो भी हीरे मोती सब का ज्ञान था। तो पन्ना, माणिक, नीलम ये सब नाम है, ये सब नाम रखे हुए। तो इंद्र सभा में परियों के नाम ये थे, पुखराज परी, माणिक परी, नीलम परी, तो सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी तो नाम है ना, तुम परियां हो। अभी कौन परियां, बाबा कहते हैं तुम परियां हो, क्योंकि इंद्र सभा में बैठे हो। तुम परियां तो उड़ने वाली आत्माएं हो, तो परियां माना उनको तो पंख दिखाते हैं परियों को, लेकिन कोई पंख थोड़ी हमें, लेकिन आत्मा तो उड़ सकती है ना, आत्मा बिना कोई पंख के भी तो उड़ सकती है एक सेकंड में। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, कोई और परियां नहीं है, तुम ही हो उड़ने वाली आत्माएं। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है, अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, कोई नीलम, कोई पेरूज, पेरूज भी कोई रत्न का नाम होगा, पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम तो 1000 रुपया, तो कोई का दाम तो 10-20 रुपया, उस समय तो 10-20 भी बहुत बड़ी बात थी। तो बच्चों में भी नंबर वार है, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं और कोई फिर पढ़कर दास दासी भी बनते हैं। एक ही पढ़ाई है, लेकिन एक ही पढ़ाई से कोई पढ़ाई पढ़ के विश्व का मालिक बन जाते हैं और कोई फिर दास दासी बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, इंद्र भी उनको कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है, बाबा की मुरली चलना माना ये ज्ञान वर्षा होना, इंद्र की ज्ञान वर्षा। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी ये है, अगर निश्चय हो जाए। कौन सी एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण हम ये बनते हैं, ये निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई को छोड़ेंगे थोड़ी। फिर अगर पढ़ाई छोड़ देते माना निश्चय था ही नहीं ना, अगर निश्चय होता तो कुछ भी हो जाए बाबा की पढ़ाई को नहीं छोड़ते, तो छोड़ेंगे ही नहीं ना अगर निश्चय है तो। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको तो कभी तीर लगेगा ही नहीं, आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं, माया दे अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है। दे अभिमान आया माना माया ने थप्पड़ मारा। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुष्टर है, बहुत धोखेबाज है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। कितनी जोर की थप्पड़ लगती होगी हाँ, जो गिरा देती है। समझते हैं हम कभी भी नहीं गिरेंगे, हम बहुत निश्चय बुद्धि है, एक बाबा दूसरा न कोई, इतना निश्चय है हमारे में। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं, समझते हैं कि हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है, छोड़ती नहीं है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो फिर ईश्वर के सिवाय तो कोई बना न सके। किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं जो ऐसे कहे पति पत्नी को कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम दोनों को पवित्र बनना है, कोई हिम्मत नहीं रखेगा। तो बाबा कहते ये ईश्वर के सिवाय कोई ऐसे पवित्र बना न सके, ये तो ईश्वरीय मिशन है। बाप को खिवैया भी कहा जाता है और तुम हो नैया, तुम नैया बाबा खिवैया। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने, कहते भी हैं नैया के लिए क्या कहते हैं, सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, इस समय ज्ञान और भक्ति की जैसी लड़ाई होती है, कितने मठ पंथ है चारों ओर, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की भी विजय होती है ना। हाँ, लोग कहेंगे नहीं, ब्रह्मा कुमारियों में नहीं जाना है, और सत्संगों में भले जाओ, पर ब्रह्मा कुमारियों के सत्संग में नहीं जाना है। तो उस भक्ति की जैसे विजय हो गई, तो भक्ति की तरफ, तो ज्ञान और भक्ति की जैसी लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। सच की नैया डोले डोले लेकिन डूबे नहीं, तो सच की जो नैया है वो तो डूब नहीं सकती, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति के तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन ने देखा ना, कौरवों के पक्ष में कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इतने सारे बड़े बड़े उस कौरवों की तरफ है। तो भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ पांडवों में भी कोई कम थोड़े बड़े योद्धे हैं, अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। अब ये तो सब कहानियां बैठ बनाई है, गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है, इस समय ही युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं, जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ भी न सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे, पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। वो क्या करेंगे, बैठेंगे, समझेंगे तो कुछ नहीं, या वहां देखते रहेंगे वायरों के माफिक ऐसे ऐसे। बाबा कहते तवा, हाँ गरम तवा, उनके ऊपर बूंद गिरी भी तो फिर भी उड़ जाएगी। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। अब ये हॉल होलीएस्ट ऑफ होली का है, तो हॉल भी होलीएस्ट ऑफ होली है, और होलीएस्ट ऑफ होली बाप हमें पढ़ाते हैं। पोप को होली कहते हैं ना, ये तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं, ये भी कोई सब थोड़ी समझते हैं। अर्जुन को भगवान ने ये कहा ना, ये सब मरे हुए देखो, सब मरने वाले हैं। तो अर्जुन ने देखा सब मरे पड़े, इतने बड़े बड़े जो गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनके जिन्होंने इनको सिखाया था वो भी सब मरे पड़े हैं। तो अर्जुन को तो मोह आके जागृत हो गया, अरे सब ये मर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी कोई थोड़ी समझते हैं, भल सुनते हैं, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं, ये भी कोई सब थोड़ी समझते हैं, भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं, न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं, न खुद भी धारण करेंगे न औरों को ये कराएंगे बातें। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है, गूंगे और बहरे होंगे तो खाली इशारा ही करेंगे ना, सुना तो नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। अब वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, कल हमने देखा एक चित्र जिसमें दादी जानकी को दिखाया है। कान हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, दादी जानकी तो बहुत कहती भी थी ना, तो उनका चित्र बनाया, हो सकता है दादी से करवाया हो पता नहीं। तो वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है, मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है, उसको कहा ना शक्ल तो देखो अपनी, तो बंदर की शक्ल थी। तो बाबा कहते नारद की भी कहानी बैठ बनाई है, उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, पांच विकार तो अंदर में नहीं है, जैसे साक्षात्कार होता है, अब उनको साक्षात्कार हो गया मेरे में तो सचमुच बंदर हूँ। हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना, अभी वो तो बंदर जैसा ही, लेकिन हनुमान तो महावीर था। हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना, तो बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता है, सत्युग में ये कुछ भी बातें होती नहीं, ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। तो बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो, स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। गुस्सा नहीं आ जाना चाहिए, किसने आपकी ग्लानी की और तुरंत गुस्सा आ गया, बाबा कहते नहीं धीरज धारण करो, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंचे स्टूडेंट्स हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं। क्यों डायरेक्ट पढ़ाते हुए बच्चे भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं क्योंकि साधारण तन है ना, ब्रह्मा बाबा का तो साधारण ही तन था तो उनको ही देखते थे, पर उनके तन में शिव बाबा है ये तो नहीं देख पाते थे, तो इसीलिए तो फिर बाबा कहते हैं थोड़े अलबेले हो जाते थे। तो भगवान पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम उठ नहीं सकेंगे, देहधारी को मत देखो तुम उठ नहीं सकेंगे, आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच में रहती है, आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हाँ बाबा की मुरली सुनकर कांध हिलाती है, तो ये कौन कांध हिलाता है, ऐसे थोड़ी शरीर अपने आप हिलता है, आत्मा हिलाती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है, तो हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो, हाँ सोचो मैं आत्मा इस शरीर रूपी भृकुटी तख्त पर बैठा हूँ। तुम तमो प्रधान थी अब सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से क्या होगा, देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देह अभिमानी है, सब माना सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है ना, शरीर खाता पीता है क्या, अब जाता तो पेट में है शरीर के, लेकिन आत्मा को स्वाद तो आत्मा को आएगा ना। अब डेड कोई मनुष्य मर गया उसको आप खिलाओ उसको क्या स्वाद आएगा, अनुभव तो आत्मा ही करती है ना, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो है निराकार, शिव बाबा न खाता है न पीता है ना। कई पूछते थे उस समय जब बाबा की मुरली पूरी होती थी बाबा को खिलाते थे, तो कई पूछते थे अभी ये किसने खाया, शिव बाबा तो खाते नहीं है, तो क्या ब्रह्मा बाबा ने खाया या गुर्जर दादी ने खाया, क्योंकि पेट में तो गुर्जर दादी के जाएगा ना, तो बाबा तो शिव बाबा तो अभोक्ता है। तो दादी जी यही कहती थी ये हमारा प्यार है, अब भगवान को भोग लगाते भगवान तो खाता ही नहीं है, भक्ति मार्ग में कितने लड्डू रखते हैं भोग में, एक लड्डू भी कम होता है क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन ये भावना है और भावना का भाड़ा बाबा जरूर देते हैं, तो इसीलिए उस भावना से करते हैं। बाकी तो ये थोड़ी शिव बाबा तो खाता नहीं और ब्रह्मा बाबा भी तो अव्यक्त फरिश्ता है, तो शरीर ही शरीर के अंदर ही जाएगा, पर अनुभव तो आत्मा करती है ना, भासना आत्मा को आती है, वासना भी आत्मा लेती है, क्यों नहीं लेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। अब बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो है निराकार, ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता तो कुछ नहीं है, शिव बाबा अभोक्ता है, तो इसकी फिर वो लोग कॉपी कर बैठे हैं। अब क्या आप कॉपी क्या करते हैं, उस समय कोई था, एक बाबा कहते थे, कई बार मुरली में आया, एक अहमदाबाद में साधु था, वो कहता था ना मैं खाता हूँ ना पीता हूँ, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो माना कुछ नहीं, माना खाता पीता नहीं, परंतु फिर CID रखी गई उसके आगे, खाता पीता नहीं है तो कैसे जिंदा है। तो फिर देखा कि वो बाथरूम में जा करके गुड़ खाता था, पकड़ा गया, हाँ गुड़ खाता था, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं। फिर वो लोग कॉपी कर बैठे कि भाई जैसे भगवान कुछ खाता पीता नहीं है, मैं भी कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो कितना मनुष्यों को ठगते हैं, बाथरूम में जा करके खाएगा कौन देखेगा, वो तो बंद करके खाएगा, कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तो माना खाता पीता नहीं है, माना ये भगवान हो गए आज, क्योंकि भगवान तो अभोक्ता है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। तो बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षियों देखता हूँ। आजकल वरदान में साक्षी स्थिति का बहुत आ रहा है। तो बाबा कहते हैं बाबा भी बच्चों को साक्षी होकर देखते हैं, कल्प कल्प की तरह पढ़ाते भी हैं पर साक्षी होकर देखते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे बच्चे भी, जो पढ़ा था कल्प पहले वही पढ़ेंगे। टाइम तो लगता है, कहते हैं मनुष्य कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए, देखो बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं, अंदर में कोई इच्छा न हो, इच्छा मात्र अविद्या हो, तब सदा खुशी में डूबे हुए रहेंगे। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है ना, सबका पेट भरा हुआ। वैसे तो पेट खाली भी होगा ना, अनाद होके आए हैं, अभी नाश्ता करेंगे, भूख लगेगी, लेकिन कौन सा पेट भरा हुआ है? हाँ, मन बुद्धि का पेट, बाबा की याद में बाबा के ज्ञान रत्नों को श्रवण कर रहे हैं तो जैसे भरपूर हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसीलिए पेट भरा रहता है, माना कहीं भी आंख नहीं डूबती। जिसका पेट भरा हुआ होता है ना, उसकी कहीं भी आंख नहीं डूबती। और सचमुच अगर भूख लग रही है, वो देखेगा क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, हाँ मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, पर पेट भरा हुआ है तो उसकी आंख कहीं नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, हम खुशी की खुराक सदा खाते रहते हैं तो पेट भरा हुआ रहता है। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। अब देखो बाबा ने कसौटी बता दी, अगर खुशी नहीं रहती है इसका मतलब कहीं दास दासी न जाकर बने, अगर सदा खुशी है तो आप फिर दास दासी थोड़ी बनेंगे। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी, पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके, इतना महावीर बनना है। तो बाप कहते हैं आंखों की भी बड़ी संभाल रखनी है। अब जीव की तो बाबा ने बताया, पेट की भी बताया, अभी आंखें, आंखों की भी बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचलता क्यों करती है? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया, गिर पड़े। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। लो 10 वर्ष बाबा के पक्के बच्चे बने, सेवा इतनी की, इतनी खुशी की खुराक मिली, सब कुछ पाया, और 10 साल के बाद भी फिर गिर पड़े, माया ने गिरा दिया। तो बाबा कहते अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे है ना, गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवानोवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं, गीता में आता है, क्यों ऐसे कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला मुझे जानते हैं। अब श्री कृष्ण सामने खड़ा हो जाए तो उसको तो कौन नहीं पहचानेगा, सब पहचानेंगे। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते, सारी इतनी भीड़ मच जाती है, यहाँ श्री कृष्ण आया है, फिर पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में, यहाँ नहीं आ सकता श्री कृष्ण कलयुग में। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के जन्म की आत्मा है। श्री कृष्ण के आगे तो जट सब भाग आए, पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। बॉम्बे में आया था पोप 1964 में, यूक्रिस्टिक कांग्रेस थी, दुनिया भर के लोग आए थे उसमें, तो बहुत कुछ, कितने हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया, क्या नहीं कर दिया, बहुत कुछ किया। तो बहुत लाखों में आते थे, आते रहे लोग यहाँ। लेकिन फिर जब ये हिंदू संगठन यहाँ बहुत थे तो उन्होंने जब देखा अरे ये तो हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, पोप उनको क्रिश्चियनाइज कर देता था, तो उन्होंने बहुत विरोध किया, इतना विरोध किया, आंदोलन किया, तो आखिर पोप को भाग जाना पड़ा, नहीं तो उनको एक महीना रहना था यहाँ। लेकिन वो जल्दी चला गया क्योंकि इतना विरोध हो गया उसके विरुद्ध कि ये सब क्या कर रहा है पोप आकर। उसके बाद कभी भारत में नहीं आया, कभी नहीं आया। तो बाबा कहते हैं तो पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय पतित तमो प्रधान है, कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के, अब ये देखो ये बड़ी गहरी बात बाबा बताते हैं, बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं वो बाबा को याद आते हैं, वो तो सेंटरों पर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ बुद्धि बाबा की चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं, कितनी सब दादियां आती थी ना बाबा से मिलने के लिए, रहती थी सेंटरों पर, लेकिन मधुबन में तो बहुत आती रहती थी। तो जब वो दादियां आती थी, वो हिस्ट्री हॉल ही था, मेडिटेशन हॉल तो बाबा की अव्यक्त होने के बाद बना ना, तो वो सामने बैठती थी, बिल्कुल सामने, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, सब दादी चंद्रमणि, सारी दादियां नीचे पट में। कोई सोफा वोफा भी नहीं थे हिस्ट्री हॉल में, कुछ भी नहीं था, फोम भी नहीं था, दरी होती थी, बस दरी पर सब बैठते थे। तो फिर बाबा कहते तो जब सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों, जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, उन बच्चों को देखता हूँ जो अनन्य बच्चे सामने बैठे। बाबा उनको कहते थे बच्चे आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ यहाँ भी आप देखते थे ना दादी जान की, किसी न किसी को याद करती थी, वो कहाँ है, वो देखे पीछे बैठा है, क्यों पीछे बैठो, आगे आओ आगे आओ आगे आओ, दादी उनको आगे करती थी। तो बाबा भी कहते थे क्यों पीछे बैठे हैं, आगे आओ। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, अनन्य बच्चों को देखता हूँ, नहीं तो अगर वो दादियां नहीं होती थी उस समय तो दादी नहीं कहते थे, बहन ही कहते थे, बड़ी बहने, तो वो सब जो नहीं होती थी वो तो अपने सेंटरों पर होती थी, तो फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे वो आगे बैठते थे। तो बाबा कहते हैं वो नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, वो दादियों को बाबा याद करते हैं, वो कहाँ कहाँ है, तो मुरली तो चलती है उनके सामने जो दादियां नहीं है मान लो, लेकिन याद बाबा उनको करते थे जो महारथी है। नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। अब सामने कोई बैठा होगा और झुटके मार रहा है, होता है कई बार, अभी क्या कहें किसको, लेकिन हम मुरली जब चलती है तो बाबा कहते हैं सामने बैठने वालों को तो बहुत ध्यान रखना है, कभी झुटका नहीं खाना है। तो उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ, मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, बाबा को भी मजा आता था मुरली सुनाने में। नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं, फिर बाबा वो बांदेली बच्चों को याद करते हैं, हम बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है बांदेली बच्चियों को। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। अब घर में समझो मंदिर है, अब भक्ति पहले बहुत करती थी, बहुत सुंदर मंदिर है, अब घर में समझो मंदिर है, स्त्री और पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है, मानो स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और उसकी और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा। हाँ पहले तो हम दोनों साथ में भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अभी अब उसको ज्ञान मिल गया, ज्ञान की चटक हो गई तो वो इतना नहीं भी करती है तो हंगामा हो जाएगा। अब वो भक्ति भी न करे फिर विकार में भी न जाए, हाँ पति के साथ विकार में भी न जाए, फिर शास्त्र आदि भी न पढ़े तो झगड़ा होता है, क्यों ये सब करती है, तुमको जादू लग गया, नहीं जाना है वहां, ऐसे कर देते हैं। अब इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए ऐसे रोकते नहीं है, है ना, कई होंगे या माताएं होंगी जिनको बहुत बंधन पड़े, हाँ जिनको बहुत बंधन पड़े, अभी तो छुटे ली, अभी तो आ गई, लेकिन जिनको बहुत बंधन पड़े हाथ उठाओ माताएं बहने, हाँ कन्याओं को भी वागा देखो हाथ उठा रहे हैं जरूर। तो बाबा याद करते ऐसे बांदेली माताओं को, तो बाबा कहते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई पवित्रता की तो बातें ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कहते। यहाँ है पवित्रता की बात, पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं, अब उसको पवित्र रहना है, स्त्री के साथ नहीं रह सकते तो फिर जंगल में चले जाते हैं। अब स्त्रियां कहाँ जाए, आजकल तो स्त्रियां भी सन्यासी बहुत बन गई है, वो भी मठ पंथ चलाती है, स्त्रियां कहाँ जाए, स्त्रियों के लिए तो वो समझते ये नरक का द्वार है, इसलिए नरक के द्वार को छोड़ो और बन जाओ सन्यासी, तो नरक का द्वार समझते हैं। तो बाप कहते हैं हाँ ये माताएं क्या है, स्वर्ग का द्वार है, नरक का द्वार नहीं है, स्वर्ग का द्वार है, तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन कर रही हो, इनसे पहले तो नरक का द्वार थी बरोबर, हाँ विकारी तो बनी होगी ना बच्चे पैदा की, तो बाबा कहते नरक का द्वार थी पहले, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है, सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार, ये समझ की बात है। तो तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा तो सब में नंबर वार होती है, तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर के बैठे हो, अब जो मधुबन में रहते दुनिया से निकल के यहाँ मधुबन में बैठे हैं, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पहले तो कई बार बाबा ने कईयों को युगलों को भी यहाँ समर्पित कराया, युगल भी समर्पित हुए थे, बहुत है ऐसे। और फिर तो बाबा कहते नहीं, अगर परिवार है तो समर्पित नहीं होना है, आपको अपने परिवार में ही रहना है। परंतु अब तो समझाया जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहना है, उनको तकलीफ होती है, हाँ ऐसे कैसे यहाँ आके रहेंगे उनको तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी बाबा कहते हैं हाँ पवित्र रहो, ग्रस्त व्यवहार में रहते। सो भी बाबा कहते इस अंतिम जन्म की बात है, 62 जन्म या 63 जन्म तो पवित्र रहे, बस एक जन्म मेरे खातिर बाबा कहते पवित्र रहो। तो इस अंतिम जन्म की बात है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। शरीर रूपी ड्रेस हर जन्म में अलग अलग मिली ना ड्रेस, तो आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है, मूल बात ही ये है। तो बाप कहते हैं मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा भ्रकुटि के बीच में रहती है, सबकी आत्मा भ्रकुटि के बीच में बैठकर ना सुन रही है, आत्मा भ्रकुटि के बीच में रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें न होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। तो बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर के देते हैं, परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वो भी तो शरीरों को ही देखते हैं, ये तो आत्मा को परमात्मा समझाते हैं। दूसरा फिर कहते हैं हाँ दूसरे क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं आत्मा में तो लेप छेप लगता ही नहीं है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। अब ये नहीं समझते हैं कि आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाप समझाते रहते हैं ये मत समझो मैं फलाना हूँ, हाँ ये फलाना है, केवल देखो देखना। बाबा कहते देखो नहीं देखो, नहीं सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। हम यही बताते ना, यहाँ तो कोई जात पात नहीं है, और कई संस्थाओं में जात पात होती है, केवल इसी धर्म वाले आ सकते हैं, इसी भाषा वाले आ सकते हैं, कई ऐसे। तो जात पात का तो यहाँ कोई भेद नहीं रहना चाहिए, अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को नहीं मानती है, धर्म निरपेक्ष है, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है ना, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है, तो उस हिसाब से तो सब आत्माएं एक समान है, सबका एक ही धर्म है शांति। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, हियर नो ईविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्म इंद्री चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। ये सब जो दुनिया में खेल चल रहा है ये माया का खेल है। इस माया के खेल को बाबा कहते हैं, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भवन। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। दुनिया में तो माया का ही खेल है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों पर अभी माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने भल आए, नमस्कार करने आए पर वार करने नहीं आए। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, वो नमस्कार करने आई है, खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हो। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो, बहुत बड़ी बात है, स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो। किसी ने मेरे से ये भी पूछा, बाबा को कभी गुस्सा आता था? कभी नहीं आता था, कभी नहीं। हाँ, बाबा तो साक्षी हो देखते थे बच्चों को। दादियां भी देखो कैसे एकदम साक्षी हो देखती थी, बहुत मिसाल दादियों के भी है। तो ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मातीत अर्थात कर्मों के परतंत्र भी नहीं, न कर्म के हम वश हो न अधीन हो, स्वतंत्र हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो। एक तो बाबा कहते कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। हाँ, कोई किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, भले इंचार्ज है लेकिन लगाव हो, तो मेरा ही है, मेरा, मैं, मेरा। तो बाबा कहते वो भी न हो, कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। और जैसे आप सबको पता है, आज प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने का दिन है, मिलन मनाने का दिन है। तो शाम को 3 बजे से डायमंड हॉल के गेट खुलते हैं और फिर आकर के बैठते हैं, योग करते हैं। शाम को 5 बजे सूरज भाई का क्लास होता है, फिर 6:15 बजे भोग लगता है, फिर 6:30 बजे हम बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं 8 बजे तक। तो अवश्य जो पार्टी में आए हुए हैं वो हाथ उठाएं, पार्टी में आए हुए हाथ उठाएं। तो आप तो सब वापस नीचे जाएंगे ही, परंतु जो यहाँ ठहरे हुए हैं पांडव भवन में, पार्टी में आए हैं लेकिन यहाँ ठहरे हुए, वो हाथ उठाएं, वो हाथ उठाएं। तो जो यहाँ भाई बहने ठहरे हुए हैं, वे सभी अभी हिस्ट्री हॉल में जाएं, वहां आपको सौगात मिलेगी। जो यहाँ ठहरे हुए हैं, जो नीचे से आए हैं, एक दिन के लिए आए हैं, उनको तो नीचे मिली होगी सौगात, पर यहाँ वालों जो ठहरे नहीं होगी मिली, तो आप अभी योग के बाद हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहां आपको शशि बहन सौगात देंगे। और बाकी तो यहाँ तो ट्रांसमिशन चलती ही है, ओम शांति भवन में तो नहीं होगा, यहाँ तो सब तो तोड़ा गया है। बाकी मेडिटेशन हॉल में और बाहर पांडव भवन के आंगन में बड़ी स्क्रीन पर सब देख सकते हैं, अगर नहीं जाएंगे। नीचे भी बहुत आ गए हैं, हद से ज्यादा आ गए हैं, आप सोचो कितने आ गए हैं। और गुजरात भी साथ में है, तो गुजरात तो वो तो एक दिन के लिए आता है, एक थैली लेकर आ जाते हैं और सवेरे आज पहुंच जाते हैं और बाबा की मुरली के बाद चले जाते हैं। तो कल भी हम गए थे, देखा क्लास में सारा लगभग तीन हिस्सा हॉल फुल था, यहाँ भी कितने आए थे, लेकिन काफी भाई बहने आ चुके हैं। तो जरूर हम कहेंगे कि जो यहाँ के हैं वो यहाँ ही ट्रांसमिशन में देखें, नीचे न जाएं तो अच्छा ही रहेगा। फिर भी जो जाना चाहे, अपना साधन है तो क्यों नहीं जाएंगे, डबल विदेशी तो जाएंगे ही, वो तो नीचे जाएंगे, उनके लिए तो बसेस का प्रबंध होगा। फिर अब योग के बाद डबल विदेशी भाई बहनों से हम प्रोग्राम देंगे, परंतु भारत वाले योग के बाद उठेंगे और जो पार्टी में आए हुए हैं, सौगात नहीं ली है, वो यहाँ हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे नाश्ते से पहले और फिर आपको सौगात मिलेगी। ओम शांति। तो योग के बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे,